एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के साहित्य के एक ऐसे, कह सकते हैं, मील के पत्थर की बात करेंगे जिसने उपन्यास लिखने और पढ़ने के मायने शायद हमेशा के लिए बदल दिया। जेम्स जॉयस का महाकाव्यात्मक उपन्यास यूलिसीज।
हाँ, नमस्कार। और ये महज एक किताब नहीं है जैसा आपने कहा, ये तो साहित्य की दुनिया में एक, मतलब, भूचाल लाने वाला दस्तावेज था।
बिल्कुल, 1922 में जब ये पेरिस में छपी तो जैसे धमाका हो गया साहित्यिक जगत में, है ना?
हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ ने कहा, भाई ये तो अद्भुत प्रतिभा है, शिखर है, और कुछ ने सिरे से खारिज कर दिया, कहा ये अश्लील है, समझ से परे है, और कई देशों में तो सालों तक बैन रही है किताब।
सोचिए, लेकिन आज तो ये आधुनिकतावाद की, मतलब मॉडर्निज्म की बुनियाद मानी जाती है।
सही कहा। और इसके लेखक जेम्स जॉयस 1882 से 1941 तक आयरलैंड के वो उपन्यासकार जिनका नाम आधुनिक साहित्य के पुरोधाओं में गिना जाता है।
और डबलिन शहर, वो तो जैसे उनकी आत्मा में बसा था। उन्होंने कहा भी था, अगर डबलिन शहर कभी नष्ट हो जाए तो उसे यूलिसिस के पन्नों से फिर से खड़ा किया जा सकता है।
हाँ, ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो एक कैरेक्टर है ना?
बिल्कुल, जीता जागता पात्र। और जॉयस की शैली, उनकी सबसे बड़ी देन शायद वो भाषा के साथ खेलना, नए प्रयोग,
और खासकर वो चेतना प्रवाह तकनीक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं।
हाँ, समझाइए जरा इसे, मतलब क्या है ये?
मतलब पात्रों के मन में जैसे विचार आते हैं, यादें, संवेदनाएं, एक के बाद एक, बिना किसी क्रम के, बिना रुके, वैसा का वैसा पन्नों पर उतार देना, कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं।
अच्छा,
जैसे असल में हमारा दिमाग सोचता है।
हाँ,
कुछ वैसा ही। और यूलिसिस शायद इसी तकनीक का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण है।
और उपन्यास का ढांचा भी तो कम अनोखा नहीं है, होमर के महाकाव्य ओडिसी पर आधारित।
हाँ, ये कमाल की बात है। प्राचीन यूनानी महाकाव्य की कहानी को लेकर उसे 20वीं सदी के डबलिन में सिर्फ एक दिन की कहानी में ढाल दिया, 16 जून 1904।
और उपन्यास के 18 अध्याय, जिन्हें वो एपिसोड कहते हैं, वो ओडिसी के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं, है ना?
बिल्कुल। हर एपिसोड का अपना एक सिंबलिज्म है, अपनी एक खास शैली है। तो आज हम इसी जटिल, चुनौतीपूर्ण, लेकिन उतनी ही शानदार कृति की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे।
हाँ, प्रयास रहेगा कि हम इसकी कहानी, इसके पात्रों के मन की उथल पुथल और इसके गहरे विषयों को थोड़ा समझ सकें।
चलिए तो कहानी की दुनिया में चलते हैं। 16 जून 1904 की सुबह डबलिन शहर जाग रहा है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, और हमारे सामने तीन मुख्य पात्र हैं जिनकी जिंदगी का ये एक दिन हम बहुत करीब से देखने वाले हैं।
कौन कौन है ये?
पहले है लियोपोल्ड ब्लूम, अधेड़ उम्र के यहूदी विज्ञापन एजेंट हैं, थोड़े साधारण से दिखने वाले पर अंदर से दार्शनिक और बहुत ज्यादा मानवीय। वो हमारे, कह लीजिए, आधुनिक ओडिसियस हैं, जो दिन भर शहर में भटकते रहते हैं।
ओडिसियस जो घर लौटना चाहता था।
और दूसरे?
दूसरे हैं स्टीफन डेडलेस, एक नौजवान, बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन काफी परेशान कवि और शिक्षक।
अच्छा, ये वही स्टीफन है जो जॉयस के पिछले उपन्यास ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में था।
हाँ, वही। यहाँ वो ओडिसी के बेटे टेलेमेकस का आधुनिक रूप है, जो एक तरह से अपने आध्यात्मिक पिता की तलाश में भटक रहा है।
पिता की तलाश, दिलचस्प। और तीसरी?
तीसरी है मॉली ब्लूम, लियोपोल्ड की पत्नी, एक गायिका है वो। ऊपर से देखें तो वो ओडिसी की पत्नी पेनेलोपी की तरह घर पे इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनकी असली महाकाव्य यात्रा तो उनके मन के अंदर चलती है, जिसका पता हमें उपन्यास के बिल्कुल आखिर में चलता है।
अच्छा, तो कहानी शुरू कैसे होती है? सुबह का वक्त है। हाँ, सुबह।
स्टीफन डबलिन के किनारे बने एक पुराने मल्टेलो टावर में है अपने कुछ दोस्तों के साथ, लेकिन वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है। उसकी माँ की अभी अभी मौत हुई है और उसे गहरा अपराध बोध है।
अपराध बोध क्यों?
क्योंकि उसने माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की थी, उनके लिए मृत्यु शैया पर प्रार्थना करने से इनकार कर दिया था। जॉयस इसे कहते हैं एजेंट बाइट ऑफ इनविट, अंतरात्मा का पश्चाताप।
अच्छा,
तो वो बौद्धिक रूप से तो बहुत तेज है, अभिमानी भी, पर अंदर से भावनात्मक रूप से कटा वसा है।
और उसी वक्त ब्लूम क्या कर रहे हैं?
उसी समय शहर में दूसरी तरफ 7 एक्लिस स्ट्रीट पर लियोपोल्ड ब्लूम अपनी पत्नी मॉली के लिए नाश्ता बना रहे हैं, किडनी तल रहे हैं।
अच्छा।
और उनका दिमाग एक अजीब सी प्रयोगशाला जैसा है, उसमें विज्ञान की बातें चल रही हैं, शरीर रचना के ख्याल आ रहे हैं, विज्ञापन के जुमले घूम रहे हैं और साथ ही निजी चिंताएं भी।
जैसे कि उन्हें ये पता है कि आज दोपहर उनकी पत्नी मॉली अपने प्रेमी ब्लेजेस बॉयलिन से मिलने वाली है। ये ख्याल एक कांटे की तरह उनके मन में चुभ रहा है। और यहीं से ब्लूम की दिन भर की यात्रा, उनकी अपनी ओडिसी शुरू होती है डबलिन शहर में।
तो यहाँ जो मुख्य संघर्ष है कहानी का, वो बाहरी नहीं है, मतलब कोई जंग या एडवेंचर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये पूरी तरह से अंदरूनी है,
अस्तित्व से जुड़ा हुआ।
जॉयस शायद ये पूछ रहे हैं कि आज की इस टूटी फूटी बिखरी हुई अकेली कर देने वाली दुनिया में इंसान अपने जीवन का अर्थ कैसे ढूंढे, जुड़ाव कैसे महसूस करें,
बिल्कुल
घर की भावना कहां से लाए।
हाँ, जब सारे पुराने बंधन, पुरानी मान्यताएं टूट रही हों, रिश्ते उलझ गए हों, तो अपनी पहचान बनाना ही मुश्किल है।
बिल्कुल।
और इसी से जुड़ा है वो पिता और पुत्र की तलाश का थीम। स्टीफन, जिसे एक गाइड की जरूरत है, एक आध्यात्मिक पिता की जो उसे रास्ता दिखाए।
और दूसरी तरफ ब्लूम।
हाँ, ब्लूम जिनका अपना बेटा रूडी जब वो बच्चा था मर चुका है, तो वो अपने अंदर एक पिता की कमी महसूस करते हैं, एक खालीपन। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों, स्टीवन और ब्लूम, एक दूसरे में वो खोई हुई कड़ी पा सकते हैं। ये उपन्यास के इमोशनल कोर में है।
और मॉली ब्लूम, वो इंतजार करती हैं, पेनेलोपी तो हैं, पर उनकी कहानी भी बेवफाई और शादी की हकीकत को बहुत बेबाकी से दिखाती हैं, है ना?
हाँ, बहुत यथार्थवादी ढंग से, कोई आदर्शवाद नहीं। और भी कई विषय हैं, जैसे निर्वासन, अलगाव का एहसास। ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है।
कैसे?
जैसे स्टीवन अपनी कला और विचारों में अकेला है, ब्लूम कैथोलिक डबलिन में यहूदी होने के कारण समाज से कटा हुआ है, और मॉली शायद भावनात्मक रूप से अकेली है।
तो चलिए पहले ब्लूम की यात्रा पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। आप कह रही थीं वो आधुनिक ओडिसियस हैं, पर वो एंटी हीरो जैसे हैं।
हाँ, मतलब उनमें वो पारंपरिक हीरो वाली बातें नहीं हैं, वो थोड़े डरपोक भी लग सकते हैं, उनमें शारीरिक इच्छाएं भी हैं, कमजोरियां भी हैं, लेकिन साथ ही उनमें गहरी सहानुभूति है, जिज्ञासा है, दया है। और जैसा मैंने कहा, डबलिन में यहूदी होने की वजह से वो हमेशा बाहरी महसूस करते हैं, छोटे बड़े हर तरह के पूर्वाग्रह झेलते हैं।
उनकी अंदर की दुनिया कैसी है? आपने कहा उनका दिमाग प्रयोगशाला जैसा है।
अद्भुत है, मतलब उनका मन जैसे कोई आवारा बादल हो, हर चीज को देखता है, उसका विश्लेषण करता है, अजीब अजीब कनेक्शंस बनाता है, और उनके विचारों के जरिए ही हम उनके दुख को महसूस करते हैं। बेटे रूडी की मौत का दर्द, पिता ने जो आत्महत्या की थी उसकी याद, मॉली की बेवफाई का एहसास, और उसे स्वीकार करने की एक अजीब सी कोशिश भी। तो उनकी पूरी यात्रा एक तरह से मानवीय जुड़ाव की एक खामोश तलाश है।
दिन भर वो क्या क्या करते हैं, किन घटनाओं से गुजरते हैं?
उनका दिन भरा है छोटी छोटी, बहुत साधारण लगने वाली घटनाओं से, लेकिन जॉयस ये दिखाते हैं कि इन्हीं साधारण पलों में जिंदगी की गहरी सच्चाइयां होती हैं। सुबह नाश्ता बनाते वक्त कैलिप्सो एपिसोड, उनके विचार विज्ञान और बेवफाई के बीच कूदते रहते हैं। फिर वो शहर में निकलते हैं, अपनी एक गुप्त प्रेमिका है मार्था क्लिफर्ड, उसका खत पढ़ते हैं, लोटस ईटर्स।
अच्छा, गुप्त प्रेमिका भी?
हाँ। फिर एक दोस्त पैडी डिग्नम के जनाजे में जाते हैं, हेड्स एपिसोड, और वहां मृत्यु, शरीर का क्षय, शोक, इन सब पर उनके जो विचार हैं वो दिल को छू लेते हैं। वो अपने पिता की आत्महत्या और बेटे रूडी की मौत को भी याद करते हैं।
ये तो काफी भारी हो जाता होगा।
हाँ, लेकिन यात्रा चलती रहती है। दोपहर के खाने की तलाश में लेस्टर गोनियंस एपिसोड, वो देखते हैं कैसे मर्द भद्दे तरीके से खा रहे हैं, उन्हें घिन आती है और वो शाकाहारी खाना चुनते हैं।
अच्छा।
और तभी उन्हें अचानक मॉली का प्रेमी बॉयलन दिख जाता है, उससे बचने के लिए वो हड़बड़ी में पास के नेशनल म्यूजियम में घुस जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें उनकी संवेदनशीलता, उनकी असुरक्षा दिखाती हैं।
और कोई खास पड़ाव?
हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे सायरन्स एपिसोड, ये ऑर्मंड होटल के बार में है। वहां संगीत बज रहा है, लेकिन ब्लूम बहुत उदास है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ठीक इसी वक्त बॉयलन मॉली से मिलने जा रहा होगा, तो तो वहां संगीत, प्रेम, विश्वासघात, इन सब के विचार मिलकर एक दर्दनाक सिम्फनी बनाते हैं।
ओ, लेकिन आपने कहा था कि उन्हें पूर्वाग्रह भी झेलने पड़ते हैं, उसका कोई सीधा उदाहरण?
हाँ, वो आता है साइक्लॉप्स एपिसोड में। ये शायद सबसे विस्फोटक सामना है। एक पब में, बारिनी कीर्नान के पब में, ब्लूम की बहस हो जाती है एक कट्टर राष्ट्रवादी यहूदी विरोधी शराबी से। उसे उपन्यास में सिर्फ नागरिक, द सिटीजन कहा गया है।
तो क्या होता है बहस में?
वो नागरिक नफरत और हिंसा की बातें करता है और ब्लूम थोड़ा साहस दिखाकर कहता है कि सच्चा राष्ट्र प्रेम और आपसी समझ पर बनना चाहिए, नफरत पर नहीं। बस इस पर वो नागरिक भड़क जाता है, ब्लूम को गालियां देता है, उस पर बिस्किट का टिन फेंकता है और ब्लूम को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ जॉइस दिखाते हैं कि ब्लूम का बाहरीपन सिर्फ एक एहसास नहीं, वो एक खतरनाक सामाजिक हकीकत भी है।
बाप रे, ये तो काफी तनावपूर्ण रहा होगा।
बिल्कुल। और फिर एक और एपिसोड है, नौसिका, सैंडी माउंट समुद्र तट पर। ब्लूम दूर से एक जवान लड़की गर्टी मैकडोवेल को देख रहा है। जॉइस पहले गर्टी के मन के रोमानी किताबी ख्यालों को बिल्कुल वैसी ही भाषा में लिखते हैं और फिर अचानक स्विच करके ब्लूम के मन की बात दिखाते हैं। उसका अकेलापन, उसकी शारीरिक इच्छाएं, उसकी मानवीय कमजोरियां, बहुत यथार्थवादी ढंग से।
अच्छा, ये कंट्रास्ट?
हाँ, ये कंट्रास्ट कमाल का है और ये ब्लूम के गहरे अकेलेपन का एहसास कराता है। तो अब देखिए, ब्लूम की यात्रा बाहरी तौर पर साधारण है, पर उसके मन की दुनिया असाधारण रूप से जटिल और गहरी है।
तो ये तो हुई ब्लूम की बात। अब आते हैं स्टीफन डेडलस पर। अगर ब्लूम बाहरी दुनिया और मानवीय जुड़ाव खोज रहे हैं, तो स्टीफन की यात्रा ज्यादा अंदरूनी, ज्यादा बौद्धिक है।
हाँ बिल्कुल, वो एक कलाकार के तौर पर अपनी आवाज, अपनी पहचान खोज रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा, वो अपनी माँ की मौत के अपराध बोध से दबा हुआ है। उसे लगता है कि धर्म, देश, परिवार, ये सब पारंपरिक सहारे उसे जकड़े हुए हैं, वो इनसे कटना चाहता है।
वो कहता भी है, इतिहास एक दुस्वप्न है जिससे मैं जागने की कोशिश कर रहा हूँ।
हाँ बिल्कुल, उसका संघर्ष इसी दुस्वप्न से आजाद होने का है, ताकि वो एक सच्चा रचनाकार बन सके। उसे लगता है आयरलैंड, उसका कैथोलिक धर्म, उसका परिवार, ये सब उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। वो है तो बहुत ज्ञानी, अभिमानी भी है अपने ज्ञान पर, लेकिन अंदर से बहुत असुरक्षित और अकेला है और अक्सर नशे में डूबकर खुद को भुलाने की कोशिश करता है।
तो उसकी सुबह कैसे शुरू होती है?
उसकी सुबह मार्टेलो टॉवर में दोस्तों के साथ बौद्धिक बहस से शुरू होती है, टेलीमैकस।
ठीक है।
फिर वो एक स्कूल में इतिहास पढ़ाता है, नेस्टा, जहां उसका सामना स्कूल के यहूदी विरोधी हेडमास्टर मिस्टर डीजी से भी होता है, जिससे वो अपनी तनख्वाह लेता है।
अच्छा।
फिर आता है प्रोटियस एपिसोड। वो समुद्र तट पर अकेला घूम रहा है और यहाँ हम उसके चेतना प्रवाह में गहरे उतरते हैं। वो वास्तविकता क्या है, भाषा क्या है, समय क्या है, अपनी कलात्मक नियति क्या है, इन सब दार्शनिक विचारों में खोया रहता है। ये पढ़ना आसान नहीं है, पर यह दिखाता है कि उसका मन कितना बेचैन, कितना सक्रिय है।
और वो लाइब्रेरी वाला सीन जहाँ वो शेक्सपियर पर कुछ सिद्धांत पेश करता है?
हाँ, वो है साइला और चेरिब्डिस एपिसोड। नेशनल लाइब्रेरी में स्टीफन शेक्सपियर के नाटक हैमलेट पर अपना एक बहुत ही जटिल सिद्धांत पेश करता है।
क्या सिद्धांत है वो?
वो तर्क देता है कि शेक्सपियर ने खुद को हैमलेट के पिता के भूत से जोड़ा था, न कि राजकुमार हैमलेट से। अब ये सिद्धांत अकेडमिक रूप से कितना सही है वो अलग बात है, पर ये स्टीफन की अपनी पिता की तलाश को दिखाता है और कैसे वो कला के जरिए जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है, वो जैसे शेक्सपियर में अपना कलात्मक पिता ढूंढ रहा हो।
अच्छा, तो ये दोनों, ब्लूम जो मानवीय जुड़ाव खोज रहा है और स्टीफन जो कलात्मक और आध्यात्मिक पिता खोज रहा है, ये दोनों डबलिन की सड़कों पर घूम रहे हैं, क्या इनके रास्ते टकराते हैं?
हाँ, कई बार करीब आते हैं। जैसे एओलस एपिसोड में, जो एक अखबार के दफ्तर में सेट है, उसकी स्टाइल भी अखबारी सुर्खियों जैसी है। वहां वो एक दूसरे को दूर से देखते हैं। फिर लाइब्रेरी वाले एपिसोड साइला और चेरिब्डिस में भी उनका आमना सामना होता है, पर बात नहीं होती।
और वो वांडरिंग रॉक्स एपिसोड, उसका क्या जिक्र है?
ओ, वो दसवां एपिसोड तो कमाल का है। वो जैसे पूरे डबलिन शहर का एक कोलाज है, एक मोज़ेक। हम शहर के अलग अलग कोनों में बहुत सारे किरदारों की छोटी छोटी झलकियां देखते हैं, जैसे सब एक ही समय पर अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हों, और इन सब के बीच शहर का वाइसराय अपने जुलूस के साथ गुजरता है। ये एपिसोड दिखाता है कि शहर कैसे एक जिंदा चीज है, जहां सबकी जिंदगियां अनजाने में ही सही पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
लेकिन ब्लूम और स्टीफन का असल मिलन कब और कैसे होता है?
उनका असल मिलन रात में होता है, और वो भी बड़े नाटकीय ढंग से। पहले आता है ऑक्सन ऑफ द सन एपिसोड। ये एक प्रसूति अस्पताल में है। ब्लूम वहां मिसेज प्योरफॉय के बच्चे के जन्म की खबर लेने गया है, और वहीं पर स्टीफन अपने मेडिकल छात्र दोस्तों के साथ खूब शराब पी रहा है और उटपटांग बातें कर रहा है।
अच्छा।
हाँ, और इस अध्याय की शैली अद्भुत है। जॉयस इसमें अंग्रेजी गद्दे के लगभग 900 सालों के विकास की नकल करते हैं, पुरानी एंग्लो सैक्सन से शुरू करके मध्ययुगीन, एलिजाबेथिन, विक्टोरियन और आखिर में आधुनिक डबलिन की बोलचाल तक।
900 साल की अंग्रेजी गद्दे की नकल एक चैप्टर में?
हाँ, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है। ये एक तरफ तो गर्भ में पल रहे बच्चे के 9 महीने के विकास का प्रतीक है, और दूसरी तरफ भाषा की अपनी रचनात्मक शक्ति और जन के विषय को भी दिखाता है। पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर जॉयस के भाषाई प्रयोग का यह शिखर है।
अविश्वसनीय। और इसके बाद?
इसके बाद आता है उपन्यास का शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे अजीबोगरीब एपिसोड, सिरसी। ये डबलिन के बदनाम रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, जिसे नाइट टाउन कहते हैं, वहां घटित होता है, और इसे लिखा गया है एक नाटक की स्क्रिप्ट की तरह। स्टेज डायरेक्शन वगैरह सब है उसमें।
नाटक की तरह क्यों?
क्योंकि यहां यथार्थ और भ्रम खुल मिल जाते हैं। ब्लूम और स्टीवन दोनों नशे में हैं, और उनके मन में दबे हुए डर, इच्छाएं, अपराध बोध सब जैसे जिंदा होकर मति भ्रम या हेलुसिनेशन बनकर उनके सामने आ जाते हैं।
मतलब एक तरह का दुस्वप्न।
हाँ बिल्कुल, एक असली भयानक डरावना और कभी कभी मजाकिया भी लगने वाला दुस्वप्न। ब्लूम के मन में उसके पुराने विज्ञापन आते हैं, मौली की बेवफाई सातार हो उठती है, उसे सामाजिक अपमान झेलना पड़ता है, स्टीफन को अपनी मरी हुई माँ का भूत दिखता है जो उसे पश्चाताप करने को कहती है।
और फिर
गुस्से और हताशा में स्टीफन अपनी छड़ी से वेश्यालय का लैंप तोड़ देता है, चिल्लाता है कि वो समय के दानव को मार रहा है। फिर उसकी लड़ाई अंग्रेज सैनिकों से हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है।
ओ।
तो ब्लूम क्या करता है?
और यही
वो पल आता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ब्लूम, जो चुपचाप स्टीफन का पीछा कर रहा था, वो उसे बचाता है, उसे उठाता है, सैनिकों से बचाता है, उसकी देखभाल करता है। और ठीक उसी पल ब्लूम को बेहोश स्टीफन के ऊपर अपने मरे हुए बेटे रूडी का एक भूतिया सा बिंब दिखाई देता है, एक छोटा बच्चा हाथ में लैंप लिए हुए।
रूडी का बिंब?
हाँ, ये एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही पावरफुल क्षण है। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से ओडिशियस यानी ब्लूम को अपना बेटा, टेलेमेकस यानी स्टीफन मिल जाता है, या कह लीजिए पिता को पुत्र मिल जाता है।
तो ये उपन्यास का क्लाइमैक्स हुआ एक तरह से।
हाँ, कह सकते हैं। इसके बाद कहानी थोड़ी शांत होती है, घर वापसी की तरफ बढ़ती है। अगला एपिसोड है यूमेयर्स। ब्लूम थके हारे स्टीफन को पास के कैब चलाने वालों के शेल्टर में ले जाता है, उसे कॉफी पिलाता है।
अब उनके बीच बातचीत होती होगी?
होती है, पर बहुत बिखरी हुई, थकी हुई, गलत फहमियां भी हैं। जॉयस ने इस एपिसोड की शैली भी जानबूझकर ऐसी रखी है, एकदम थकी हुई, क्लीशे से भरी हुई गद्य, जैसे दो बहुत थके हुए लोग बात कर रहे हों। लेकिन इस थकान और भ्रम के बीच भी दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता, एक शांत जुड़ाव बनता महसूस होता है।
और फिर घर वापसी?
हाँ, फिर आता है इथाका एपिसोड। ब्लूम स्टीवन को अपने घर ले आता है, 7 एक्लिस स्ट्रीट, और यहाँ जॉयस फिर से शैली बदलते हैं। ये पूरा अध्याय एक कैटेकिज्म यानी प्रश्नोत्तरी की शक्ल में लिखा है, ठंडा, वैज्ञानिक, बिना भावनाओं वाला।
प्रश्नोत्तरी मतलब सवाल जवाब?
हाँ, सैकड़ों सवाल और उनके तथ्यात्मक जवाब। ब्लूम क्या करता है, स्टीवन क्या सोचता है, घर में क्या क्या सामान रखा है, वो क्या पी रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल वस्तुनिष्ठ ढंग से दर्ज किया जाता है, जैसे कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट हो।
ये क्यों? इस अजीब शैली का क्या मतलब?
शायद जॉयस दिखाना चाहते हैं कि बाहरी दुनिया की सारी अराजकता के बाद अब एक तरह की शांति, एक स्थिरता आई है। दोनों कोको पीते हैं, यहूदी और आयरिश इतिहास पर थोड़ी बात करते हैं और अपनी आध्यात्मिक रिश्तेदारी को पहचानते हैं। ब्लूम स्टीवन को रात रुकने के लिए कहता भी है,
लेकिन स्टीवन रुकता नहीं है।
नहीं, वो मना कर देता है और चला जाता है। तो पिता और पुत्र का मिलन हुआ, पर वो क्षणिक ही था, पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ।
स्टीफन चला गया, अब ब्लूम।
स्टीफन के जाने के बाद ब्लूम अपने बेडरूम में जाता है। वो बिस्तर पर बॉयलिन के आने के सबूत देखता है, शायद बिस्तर पर पड़ी सिलवटें। वो उन्हें देखता है और स्वीकार कर लेता है। फिर वो मॉली के बगल में बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन एक अजीब तरीके से, सिर पैर की तरफ और पैर सिर की तरफ।
ये क्या मतलब हुआ, सुलह या दूरी?
कह नहीं सकते, ये जॉयस ने पाठक पर छोड़ दिया है, शायद दोनों।
और अब उपन्यास का अंत, मॉली ब्लूम।
हाँ, अब हम आते हैं उपन्यास के अंतिम और शायद सबसे मशहूर अध्याय पर, पेनेलोपी। ये पूरा अध्याय मॉली ब्लूम के मन के अंदर घटता है। वो आधी नींद में बिस्तर पर लेटी है और ये करीब 40 पेज का एक लंबा, बिना किसी पूर्ण विराम या कॉमा वाला वाक्य है, चेतना प्रवाह का चरम रूप।
40 पेज का एक वाक्य?
हाँ, उसके विचार आजादी से बहते हैं। जिब्राल्टर में उसका बचपन, उसका पहला प्यार, उसका गायन करियर, बेटी मिली की चिंता, ब्लूम से उसकी निराशा भी, और उसके लिए उसका स्नेह भी, बॉयलिन के साथ उस दोपहर क्या हुआ, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शर्म के।
ये पढ़ना कैसा अनुभव है?
एक अनोखा अनुभव है। मॉली के विचार शारीरिक भी हैं, भावनात्मक भी, छोटी छोटी बातें भी हैं, गहरी बातें भी, सब एक साथ घुले मिले हैं। उसमें ईर्ष्या है, गुस्सा है, वासना है, लेकिन एक जबरदस्त जीवन शक्ति है, वाइटैलिटी है।
और अंत कहाँ होता है इस विचार प्रवाह का?
अंत में उसके विचार घूम फिरकर उस दिन पर पहुंचते हैं जब सालों पहले ब्लूम ने उसे हॉथ हिल नाम की जगह पर प्रपोज किया था।
अच्छा।
और उपन्यास का अंत होता है मॉली के उस शक्तिशाली, सब कुछ स्वीकार करने वाले हाँ के साथ। अंग्रेजी में वो मशहूर लाइन है, एंड यस आई सेड यस आई विल यस। हिंदी में कहें तो कुछ ऐसा, और हाँ मैंने कहा, हाँ मैं करूंगी, हाँ
हाँ मैं करूंगी, हाँ। इस हाँ का क्या मतलब है?
ये सिर्फ ब्लूम के लिए हाँ नहीं है, ये जीवन के लिए हाँ है। सारी कमियों, सारे दुखों, बेवफाइयों, निराशाओं के बावजूद ये अस्तित्व को, प्रेम को, शरीर को और जीवन की पूरी जटिलता को गले लगाने जैसा है। ये उपन्यास को एक बहुत ही सकारात्मक जीवन की पुष्टि करने वाले नोट पर खत्म करता है।
अद्भुत। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें इस पूरी यात्रा को, तो मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं? आपने अलगाव और निर्वासन की बात की।
हाँ, वो केंद्रीय है। कैसे आज का इंसान अपनी जड़ों से, समाज से और कई बार तो खुद से भी कटावा महसूस करता है। फिर पिता और पुत्र की खोज, जो सिर्फ शाब्दिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और कलात्मक मार्गदर्शन की तलाश भी है।
और प्रेम, विवाह, बेवफाई, इसे जॉयस ने बहुत ईमानदारी से दिखाया है, बिना किसी लाग लपेट के।
बिल्कुल। ब्लूम और मॉली का रिश्ता बहुत जटिल है, पर बहुत सच्चा लगता है। और एक और खास बात, जॉयस शरीर और मन को अलग करके नहीं देखते। वो बौद्धिक विचारों को जितनी अहमियत देते हैं, उतनी ही शारीरिक जरूरतों, इच्छाओं और क्रियाओं को भी। ये इंसान का एक पूरा चित्र है, अधूरा नहीं।
हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और आयरिश पहचान, इतिहास का बोझ, डबलिन की जड़ता, ये सब भी है।
हाँ, वो भी है। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपन्यास रोजमर्रा की जिंदगी को, एक साधारण विज्ञापन एजेंट के एक दिन को, महाकाव्य का दर्जा देता है। ये दिखाता है कि साधारण इंसान के मन की दुनिया भी उतनी ही गहरी, उतनी ही जटिल और उतनी ही वीर हो सकती है जितनी किसी पुराने हीरो की यात्रा।
और शैली, शैली के बारे में क्या कहेंगे? वो तो अपने आप में एक किरदार लगती है।
बिल्कुल। चेतना प्रवाह हमें पात्रों के मन में सीधे उतरने का मौका देता है, और हर एपिसोड की अपनी अलग शैली, कहीं अखबार की नकल, कहीं संगीत की बनावट, कहीं नाटक, कहीं विज्ञान की प्रश्नोत्तरी। जॉयस भाषा के साथ खेलते हैं, नए शब्द बनाते हैं, श्लेष का इस्तेमाल करते हैं, कई भाषाओं के रेफरेंस लाते हैं। ये पाठक से बहुत मेहनत मांगता है, ध्यान मांगता है।
हाँ, ये पढ़ने में आसान तो बिल्कुल नहीं लगता, शुरू में शायद बहुत कंफ्यूजिंग भी हो।
हाँ, हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम पात्रों के साथ समय बिताते हैं, उनके विचारों की धारा में बहना सीखते हैं, एक गहरी सहानुभूति पैदा होती है। हम स्टीफन की बौद्धिक पीड़ा को समझने लगते हैं, ब्लूम के शांत दुख और उसकी गहरी इंसानियत को महसूस करते हैं, और मॉली की उस बेबाक जिंदा दिली को भी। ये पात्र हमारे जहन में रह जाते हैं।
मेरे ख्याल में यूलिसिस का स्थायी प्रभाव यही है कि ये हमें दुनिया को, शायद जिंदगी को ही, देखने का एक नया नजरिया देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे मामूली, सबसे रोजमर्रा के पलों में भी सुंदरता हो सकती है, अर्थ हो सकता है और हाँ, एक तरह की वीरता भी हो सकती है।
सही कहा, ये मानव चेतना की उसकी असीम जटिलता और समृद्धि का जैसे एक उत्सव है। और एक सवाल छोड़ जाता है ये उपन्यास कि अगर एक दिन में सिर्फ 3 लोगों के मन में इतनी कहानियां, इतनी यादें, इतने विचार हो सकते हैं, तो हर इंसान अपने भीतर न जाने कितने ब्रह्मांड समेटे हुए हैं।
बिल्कुल, शायद ये उपन्यास आज भी इसीलिए इतना प्रासंगिक है, इतना रेलिवेंट है, क्योंकि ये आधुनिक जीवन के अकेलेपन और उसमें जुड़ाव की तलाश की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे सबसे साधारण लगने वाले जीवन में भी असाधारण गहराइयां छुपी होती हैं।
हाँ, और शायद ये हमें मानवीय लचीलेपन का, रेजिलियंस का पाठ भी पढ़ाता है। मौली के उस अंतिम हाँ की तरह, जीवन की हर चुनौती, हर जटिलता को स्वीकार करने और उसे अपनाने की क्षमता।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।